सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं ऐसे, हम और बाबा साथ हैं ऐसे जैसे गले में हाथ। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। जब भी प्यार से देखा हमने सामने उनको पाया, ऐसा पक्का साथी जिसने सदा ही साथ निभाया। मीठी
टॉपिक शुरू करूं उससे पहले दो लाइन बाबा के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे गुनगुनाना अच्छा लगता है, तो बाबा के लिए फिर शुरू करते हैं। सात सुरों का बहता दरिया, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम, तेरे बिना जो उम्र बिताई, तेरे बिना जो उम्र बिताई, बीत गई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम। ये जो उम्र थी जितनी बीत गई, अब जो बचा है वो किसके नाम? बाबा के नाम। तो जो अव्यक्तवाणी चल रही है क्वेश्चन आंसर सीरीज में, ये जो प्रश्न लिया गया है वो लिया गया है 6 जनवरी 1979 की मुरली से। क्वेश्चन है, सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां कौन सी है? आई रिपीट, सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां कौन सी है? बाबा उत्तर देते, जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो असंतुष्ट है क्यों? क्योंकि उनके अंदर अप्राप्ति है। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकेंगी। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द यूज करते, यह संपन्नता को सिद्ध करता है। सागर संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप मास्टर, तो आप बच्चे क्या बनना है आपको? मास्टर सागर बनना है। बाबा कहते बच्चे बाप समान मास्टर सागर बनो, नदी तो फिर भी सूख जाती है, संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी, संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होती, अगर होगी भी तो उसका असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल की तरह अनुभव होगा, समस्या भी मनोरंजन का एक साधन बन जाएंगे। क्यों? तो बाबा कहते क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। हर समस्या को कैसे देखेंगे? नॉलेजफुल होकर। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे। किस आधार पर? निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, और विजयी होने के कारण क्या होंगे? सदा हर्षित रहेंगे। तो क्वेश्चन है कि सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां क्या होंगी? तो यहां पर जो बाबा यूज कर रहे हैं शब्द संपन्न, और संपन्न के साथ बाबा ने क्या शब्द यूज किया है? सदा, जो कि बाबा का बहुत पसंदीदा शब्द है। हर बात में बाबा सदा शब्द यूज करते हैं। तो सदा का मीनिंग क्या होता है? जो निरंतर है, सदैव है, हमेशा है, जो बह रहा है वो सदा है, जिस जो कभी खत्म नहीं होता। उसके साथ बाबा ने क्या यूज किया है? संपन्न। तो सदा संपन्न आत्माएं कैसी होंगी? बाबा हमसे एक्सपेक्टेशन रखते ना कि बच्चे आप भी सदा संपन्न बने। तो सदा संपन्न, जो संपन्न है, जैसे हमने बोला संपन्न, तो हमारे जहन में क्या आता है? संपन्न याने भरपूर, जो भरा हुआ है, जो खाली नहीं है। संपन्न याने भरपूर, और सदा यानी जो सदा भरा हुआ है, और जो सदा भरा हुआ है वो कैसा है? सदा संतुष्ट है। जो बाबा ने मुरली चलाई उसके अनुसार बता रहे हैं, जो सदा संतुष्ट है। और जो सदा संतुष्ट है, जो सदा भरा हुआ है, वो कैसा होगा? सदा हर्षित रहने वाला है। और जो सदा हर्षित रहता है वो सदा खुशी में नाचता रहता है। जो सदा खुशी में नाचता रहता है उसके जीवन में विजय ही विजय है। जो सदा विजयी होता है, और जो सदा विजयी होता है वो क्या करेगा? उसके जीवन में आने वाली जितनी भी विपरीत परिस्थितियां होंगी, उन विपरीत परिस्थितियों को वो एक मनोरंजन की तरह लेता है। मनोरंजन खेल, खेल की तरह लेता है। विघ्नों को खेल की तरह ले रहा है, तो जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही उनसे वो कभी तंग नहीं होता, दुखी नहीं होता, उन्हें एक योद्धा की तरह सामने लेकर चलता है। क्यों चल पा रहा है वो? क्योंकि उसके जीवन में क्या है? निश्चिंतता है, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि है, जो बाबा ने सारी चीजें बताई उसके अकॉर्डिंग। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं कौन हूं? सागर। बाबा के साथ हम क्या शब्द यूज करते? बाबा ही यूज करते, हम कहां करते? बाबा अपने नाम के आगे क्या यूज करते हैं? मैं सागर हूं। सागर शब्द यूज करते तो विशालता नजर आती है, बृहद नजर आता है, बेहद नजर आता है। तो बाबा कहते हैं मैं बेहद हूं, सागर हूं। सागर यानी संपन्नता, तो बाबा संपन्नता का सागर है। तो हम बच्चों से क्या एस्पेक्ट रखता है? कि बच्चे आप भी मास्टर संपन्नता के सागर बनो, आप सूख नदी मत बनो। छोटी मोटी नदी, अभी देखो यहीं पानी की कमी है, नदी सूख गई है। तो बाबा कह रहे हैं हमें नदी नहीं बनना है, क्या बनना है? संपन्नता का सागर बनना है। क्यों बनना है? बाबा, लेकिन बाबा जिस नदी की बात कर रहे हैं वो हमारे अंदर उमड़ने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें क्या बनना है? संपन्नता का सागर बनना है, क्योंकि मैं संपन्नता का सागर हूं। और यदि तुम मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आपको मेरे समान आना पड़ेगा। बिना समान आए मुझसे आप मिल ही नहीं सकते, बाबा मिलन कर ही नहीं सकते। तो बाबा संपन्नता का सागर है, तो आपको भी मास्टर संपन्नता का सागर बनना पड़ेगा। तो पहली निशानी तो बाबा ने बता दिया कि जो सदा संपन्न आत्मा है वो संपन्नता का सागर है। फिर बाबा ने कहा कि वो कैसी है? खुशी में नाचने वाली है। जो सदा संपन्न आत्माएं हैं वो सदैव खुशी में नाचती रहती हैं। उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं आ सकते। विघ्न तो आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन उन विघ्नों को भी वो मनोरंजन की तरह क्या करते हैं? पार कर लेते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। तो सदा संपन्न आत्माएं जो रहेंगी वो सदा हर्षित मुख रहती हैं। उसके साथ साथ जीवन में जो परिस्थिति है, जो है, जैसा है, उसको वैसा के वैसा वो एक्सेप्ट करती है, अर्थात उनमें स्वीकार करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? जो व्यक्ति जिस भी परिस्थिति को जितना जल्दी स्वीकार कर लेता है, वो उस परिस्थिति से उतने जल्दी बाहर निकलता है, मतलब समय की बचत होती है। दूसरा है कि वो शिकायती चित्त नहीं होते हैं, किसी बात की शिकायत नहीं करते, यहाँ ऐसा है वैसा है ऐसा क्यों है, तो उनका शिकायती चित्त नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है शिकायती चित्त कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमें ईश्वर प्राप्त हुआ है ना, अर्थात हमारे अंदर शिकायती चित्त नहीं है कि है, थोड़ा थोड़ा है, सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा है। मतलब यदि हमारे अंदर शिकायती चित्त थोड़ा थोड़ा है, अर्थात बाबा भी हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा है। पॉइंट वी नोटेड। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ तो बाबा कर्मातीत अर्थात बाबा हमारे अंदर संपूर्ण हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ रहेंगे ही नहीं ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि शिकायती चित्त है तो उतना बाबा हमारे अंदर नहीं है। हाँ वो स्थिति पे पहुंचना है हमको। नेक्स्ट है कि जो सदा संपन्न आत्माएं जो होंगी उनका अंतर्मन जो रहेगा सदैव उस ईश्वर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उसी बाबा के चारों तरफ वो रमण करता रहेगा, उनका मन इधर उधर भटकता नहीं है। बाकी थोड़ा थोड़ा तो सबका भटक रहा है, पर जो सदा संपन्न बाबा कह रहे हैं वो आत्माएं बाबा के चारों तरफ रमण करती हैं। उन आत्माओं को देखकर ऐसा फील होता है कि यदि साकार में आज बाबा होता तो इनके जैसा होता, उनका रहना चलना उठना बैठना सब किसके जैसे दिखाई देता है, बाबा की तरह। सदा संपन्न आत्माओं से बाबा प्रत्यक्ष होता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि वो एक ऐसी आत्मा है जो सदा संपन्न बनकर रही है। उसके बाद में है कि जैसे कहते हैं ना कि चाह गई चिंता गई मन हुआ बेपरवाह, जिसे कछूना चाहिए वो शाहों के शाह। बाबा कहते हैं जिसके अंदर चाह नहीं है चिंताएं नहीं है और जिसका जीवन कैसा है शाह जैसा है शहंशाह जैसा है, तो बाबा भी हमें ऐसा बेफिक्र बादशाह बेगमपुर का बादशाह बनाना चाहते हैं। बाबा की एक्सपेक्टेशन है हमसे कि बच्चे आप जल्दी से जल्दी संपन्न बन जाओ और मेरे जैसे बन जाओ। बाबा कहते हैं कि आपको ऐसे बनना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सदा संपन्न बनना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। जब आप नॉलेज की दृष्टि से किसी बात को देखते हो तो आपके अंदर संशय नहीं आता है। बाबा कहते हैं कि संशय बुद्धि जो है वो बाबा के उतने क्लोज नहीं जा सकते, बाबा के पास नहीं जा सकते, लेकिन जो निश्चय बुद्धि है वो बाबा के बहुत ज्यादा समीप है। तो जो सदा संपन्न आत्माएं हैं वो बेफिक्र है निश्चिंत है, उनके अंदर दूसरी कोई भी बात आ नहीं सकती है। अभी तो हमें भी वैसा बनना है, हमने भी थोड़ा सा बाबा को पकड़ा है, अभी तो हमें पूरा पूरा बाबा को हब करना है। कहते हैं ना कि अभी सितारों से आगे जहां और भी है, ये जो दिख रहा है ना इससे आगे और भी है, और जो और है जो परे से परे है उसको हमें पकड़ना है। जो दिखाई दे रहा है बाबा कहते हैं वो यथार्थ नहीं है, वो सत्य नहीं है, जो दिख रहा है वो भस्मीभूत हो जाने वाला है, लेकिन जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है जो उससे परे है वो यथार्थ है वो सत्य है, उस सत्य को हमको पकड़ना है, क्योंकि वही बाबा है। और जितना हम उसको पकड़ेंगे उतना हम उसके ज्यादा क्लोज आ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा विजयी बनना है आपको, तो सदा विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। हम यहाँ पर अब कुछ पॉइंट देखेंगे कि सदा विजयी रत्न के क्या क्या, विजयी रत्नों की निशानियां। उसमें पहला पॉइंट है कि वो सदा रूहानियत की शक्ति से भरपूर होते हैं। तो क्या होती है रूहानियत की शक्ति, जो सदा संपन्न आत्माएं हैं वो रूहानियत की शक्ति से भरपूर होती हैं। तो क्या है रूहानियत की शक्ति, आत्मिक प्यार देना, अलौकिकता होती है, हाँ, जिनके चेहरे चलन से आत्मिक दृष्टि तो आत्मा भाव दिखाई देता है, जो आत्मा के कैरेक्टर्स हैं वो उसके अंदर से झलकते हैं। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, बाबा ने कहा है बच्चे इस जीवन में आप परीक्षाएं देने के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात रूहानी शक्ति से भरपूर हो जाइए, क्योंकि जितनी आपके अंदर रूहानियत की शक्ति रहेगी आप उन पेपर को इजीली पास कर सकते हो, पास विद ऑनर हो सकते हो, क्योंकि रूहानियत की शक्ति के बगैर आप इस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप जो सदा संपन्न आत्माएं हैं वो रूहानियत की शक्ति से भरपूर होती हैं। नेक्स्ट है ज्ञान और योग से संपन्न होती हैं। सबसे पहला हमारा गुण है कि हम यहाँ आए हैं तो हमें ज्ञान और गुण से संपन्न बनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग की धरनी यदि पावरफुल है, अच्छी है, उपजाऊ है, तो उसी के ऊपर नवयुग का आगाज होने वाला है, नई दुनिया का आगाज होने वाला है, नवनिर्माण होने वाला है। तो उसके लिए आपका ज्ञान और योग कैसा होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी मन स्थिति अच्छी हो, मन में शांति हो, विश्व में शांति हो, तो उसके लिए ज्ञान और योग बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि योग एक योगयुक्त अवस्था एक कवच की तरह कार्य करती है। योग के बिना प्रभु मिलन हो ही नहीं सकता, सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यदि योग अच्छा नहीं है तो प्रभु मिलन भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए? सदा संपन्न आत्माओं के अंदर ज्ञान और योग की पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अनुभवों से संपन्न होना चाहिए, अनुभवी मूर्त होना चाहिए। जो अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं वो इजीली अपने से बाबा का साक्षात्कार करा देती हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बाहर लोग ज्यादा ज्ञान नहीं सुनना पसंद करते, योग में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। योग के समय भी शरीर दिन भर चलता रहता है, इधर उधर कोई खुजली कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको अनुभवी मूर्त बनना है। कैसे बनेंगे? योग भी नहीं अच्छा, ज्ञान भी अच्छा नहीं, तो अनुभवी मूर्त कैसे बनेंगे? वो बिना अनुभवी मूर्त के हमसे बाबा प्रत्यक्ष भी नहीं होने वाला, तो क्या करना पड़ेगा? स्नेही और धक्के खा खा के अनुभवी बनेंगे, धक्के मिलते हैं। अनुभवी मूर्त जो आत्माएं होंगी वो अपने जीवन को चलता फिरता एक लैब बना लेती है, लैब इन द सेंस प्रयोगशाला। बाबा ने कुछ कहा, उन्होंने उसको अपने जीवन पर अप्लाई किया, प्रैक्टिकल किया, और सामने वाले पर भी उसको यूज किया, तो क्या बना लेंगी वो अपने? हाँ करेंगी, थोड़ा थोड़ा तो करेंगी ना, लेकिन जो अनुभवी मूर्त आत्माएं बिना प्रैक्टिकल के जीवन में चल ही नहीं सकते। और ये ज्ञान बाबा कह रहा थ्योरेटिकल नहीं है, ये ज्ञान कैसा है? प्रैक्टिकली है, इसको आपको प्रैक्टिकल में यूज करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा, उन्होंने प्रैक्टिकल में अप्लाई किया और आगे बना। आज आत्माएं हमसे, हम जाते हैं बाहर तो कहते हैं कि हमें मुरली नहीं सुननी है। आप कहते हो कि यहाँ शांति है ब्रह्मा कुमारीज में, तो आप हमें शांति का अनुभव कराइए। उन्हें मुरली से मतलब नहीं, ज्ञान से मतलब नहीं, उन्हें शांति से मतलब है। तो यदि आप अनुभवी मूर्त नहीं हो तो आप उन्हें कैसे शांति का अनुभव करा सकते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं जो सदा संपन्न आत्माएं हैं वो अनुभवी मूर्त होंगी, अनुभवों की खान है, अनुभवों से संपन्न होंगी। अगला है, सर्व विशेषताओं से संपन्न होंगी। जैसे यदि हम डिफाइन करें तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व विशेषताओं से संपन्न जीवन। एक शब्द में यदि ब्राह्मण को हम इंडिकेट करें तो सर्व विशेषता संपन्न, ब्राह्मण अर्थात सर्व विशेषताओं से भरपूर जीवन। जैसे अब हम यहां स्टेज से बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं यहां से बोल रही हूं इन द सेंस आप लोग क्या समझेंगे कि ये जो बोल रहे हैं इट मीन्स उसको वो फॉलो करते हैं। आप आज मैंने कहा कि आपको मौन में भोजन करना है, ब्रह्मा भोजन शांति में मौन में करना है, और मैं जाके थोड़ी देर बाद देखूं कि आप मौन में नहीं कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ा? सामने वाली आत्मा बहुत सारी ऐसी है जो हम अभी बाहर देख रहे हैं कि आपको देखकर वो ज्ञान छोड़ देती हैं, क्योंकि यहां से कहा जाता है ईश्वरी फैमिली है, ईश्वरी परिवार है, और यदि हम वो चीजें फॉलो नहीं करते हैं तो वो इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं। तो सर्व विशेषता संपन्न यदि हम जो चीज स्टेज से कह रहे हैं, हम बाबा की बातें कह रहे हैं, तो वो हमारे अंदर धारण होना बहुत जरूरी है, तभी वो आत्मा हमको देखकर खिंची आ जाएंगी। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व विशेषताओं से भरा हुआ संपन्न जीवन। अगला है, निश्चय से भरा हुआ जीवन। कैसी होगी सदा संपन्न आत्माएं? जो निश्चय से भरपूर है, क्योंकि बाबा मुरलियों में हमेशा शब्द क्या यूज करते, निश्चय पक्का होना चाहिए, अंगद की तरह होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। क्यों कहते बाबा बार बार? क्योंकि यदि निश्चय नहीं है ना, तो आ रहे हैं मुरली सुन रहे हैं, जा रहे हैं, हम देख रहे हैं ना बाहर, इसलिए आपसे बात कह रहे हैं कि नहीं है, क्या पता क्यों आते हैं, इसके अच्छा लगता है, मुरली सुने चले गए। तो बाबा कहते हैं आपको क्या बनना है? निश्चय बुद्धि बनना है, निश्चय से संपन्न बनना है। यदि बाबा पर पूरा ट्रस्ट है, पूरा निश्चय है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, विजयी रतन बन सकते हो। और क्या हो सकता है? समाने की क्षमता होती है उसके अंदर, क्योंकि वो सागर है, तो हमें भी क्या बनना है? सागर जैसा बनना है। और सागर में कैपेबिलिटी क्या होती है? कि वो सब चीजों को अपने अंदर समा लेता है। बाबा ने हम लोगों को जैसे हैं वैसा के वैसा स्वीकार किया है, तो हमें भी क्या बनना है? सागर जैसा बनना है ताकि हम उन सबको अपने अंदर समा सके, स्वीकार कर सके, दूसरों को देने वाला। जैसे बाबा ने अभी कहा है कि जो संपन्न आत्माएं हैं वो भरपूर हैं, भरपूर आत्माएं हैं मतलब वो दूसरों को दे सकती हैं। तो वो क्या होती हैं? सदा संपन्न आत्माएं दाता जैसे होती है वो, हाँ सदा संतुष्ट भी होती है। जो संपन्न है अर्थात जो सदा संतुष्ट है, जैसे एक आम का पेड़ है उसके नीचे एक व्यक्ति बैठा है, छोटा सा उसका खेत है और आराम से लहलहाती फसलों को देख रहा है बैठा हुआ, मतलब लेटा हुआ है, एक खटिया डली हुई है उसके ऊपर लेटा हुआ है, आराम से उसको देख रहा है, निश्चिंत है, सुकून संतुष्ट है उसके जीवन में। एक व्यक्ति साइड से निकलता है, उससे तथा कथित उसका मित्र है, पुराना साहूकार है जो विदेश से अभी लौटा है, उससे बोलता है, उसके पास जाके बोलता है, भाई तुम पहले इतने सालों पहले जहां थे आज भी वही हो? तो वो बोलता है इसका मीनिंग क्या? बोले कि तुम्हारा वही छोटी सी फसल, वही खेती, आज भी तुम वहीं पर हो। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अपनी जो छोटी सी जमीन है उसको बेच दीजिए और इससे व्यापार कीजिए। तो बोले अच्छा अच्छा फिर क्या करूंगा? बोले उस व्यापार को और बढ़ाइए, जो ज्यादा पैसा आएगा उससे और बढ़ा दीजिएगा। बोले फिर क्या करूंगा? फिर बोले शहर में बंगला बनाइए, फिर और अपना व्यापार बढ़ा दीजिए। बोले फिर क्या करूंगा? बोले फिर एक काम कीजिए ना, विदेश में चले जाइएगा, वहां अपने व्यापार को बढ़ाइए। और फिर क्या करूंगा? फिर बंगला लीजिए, उसमें एक अपना पलंग बिछाइए और जाके उस पर सुकून से सो जाइए। तो वो व्यक्ति बोलता है भाई इतना तामझाम करने के बाद जब मुझे सुकून और शांति से सोना है तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी भी तो शांति से सो रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सदा संतुष्ट जो है उसमें संतुष्ट रहना है, थोड़ा पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ में संतुष्ट नहीं बनना है। बाबा सदा संतुष्ट वो शब्द यूज कर रहा है, बहुत ऊंची स्टेज के लिए बात करते हैं बाबा, कभी नीचे स्तर पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं बाबा, बहुत ऊंची जब आप सदा संतुष्टता की बात कर रहे हो। हाँ पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होना है, वो तो बाबा कहते हैं लास्ट तक आपका चलते ही रहेगा। हाँ नॉलेजफुल होते हैं वो, जो सदा संपन्न आत्मा है वो कैसी है? नॉलेजफुल है, मतलब कि हर बात को वो कैसे देखेंगी? ज्ञान की स्थिति, हाँ ज्ञान की स्टेज से देखते हैं, ताकि उनको जीवन में आने वाले जो विघ्न है, जो परिस्थितियां हैं, वो कैसे नजर आती हैं? खेल की तरह, वो उसको अनुभव मनोरंजन की तरह लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं और विजयी रत्न बनते हैं। जितना जितना आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप क्या बनते जाएंगे? विजयी रत्न बनते जाएंगे। और हाँ इच्छा मात्रम विद्या होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती। जो सदा संपन्न आत्मा है वो इच्छा मात्रम अविद्या है, क्योंकि इच्छा एक ऐसा बहुत बड़ा कारण है जो ज्ञान में आगे बढ़ने में बाधा बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और यदि आप इच्छा मात्रम अविद्या बनते हो तो आप ज्ञान में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। और हाँ सदा संपन्न आत्मा स्नेह से संपन्न है, क्षमा भावना है, दूसरों को स्नेह की नजर से देखने वाली है। और रहम दिल होंगी, मुझे राम दिल सुनाई दे रहा, दया सया रमा सब एक ही बात है। हाँ तो सदा संपन्न आत्माएं बाप समान होती हैं, वह अनासक्त योगी होती हैं। अनासक्त शब्द यूज जो है ना वो हमेशा श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है कि उनमें कोई आसक्ति नहीं होती है। जो बाप समान है, जो अनासक्त योगी है, जो संसार की किसी बातों में लिप्त नहीं है, वो तृप्त है, मतलब वो तृप्ति के सागर के समीप है, उससे जुड़ी हुई रहती है, वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उससे बाहर नहीं होती है। तो अब हम ये बात ब्रह्मा बाबा से पूछेंगे कि उन्हें वो कब मक्खन चोर के खाते थे, क्योंकि हमें उतना पता नहीं, हम साकार बाबा से ज्यादा मिले नहीं। ज्ञान की आसक्ति, उन्हें ज्ञान अपने अंदर पूरा पूरा के पूरा लेना होता है। बाप सब बच्चों को वो बाप समान बनाना चाहते थे, एक शुभ चाहत थी, शुभ इच्छा कि बच्चे मेरे समान बन जाए। चलिए टाइम हो रहा है लास्ट, हम सब लोगों ने बाबा को जीवन दिया है, दिया है हम सब ने बाबा को जीवन दिया है, दे चुके हैं, हाँ दे चुके हैं, तभी तो यहां है। तो यदि हमने बाबा को जीवन दिया है तो फिर बाबा हमारे जीवन में होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। अगर हमने बाबा को जीवन दिया है तो हमारे जीवन में वो होना चाहिए, और यदि वो हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसा है हमारा जीवन। यदि हमारे जीवन में बाबा नहीं है, तो हमने बाबा को जीवन दिया पर हमारे जीवन में बाबा नहीं है, तो फिर हमारा जीवन कैसा है। डैश डैश डैश। ओम शांति। सात सुरों का बहता दरिया, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम, तेरे बिना जो उम्र बिताई, तेरे बिना जो उम्र बिताई, बीत गई बीत गई, बीत गई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, तेरे नाम तेरे नाम, तेरे नाम तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। शांति।